दिन भर तारीख 19 दिसंबर दिन बुधवार, मैं हूँ मानसी दाश। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन खत्म, राष्ट्रपति शासन लागू।
I think governor and the president's rule must come to an end. There should be elections. People must choose their representatives.
बुलंदशहर गोकशी मामले में पुलिस का ताजा बयान, जिन्हें पकड़ा था वो निकले निर्दोष।
समुचित साक्ष्य संकलन करने पे ये तथ्य प्रकाश में आया कि तीन अन्य लोगों ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर के ये गोकशी की घटना की है।
कांग्रेस के बाद भाजपा का भी कर्ज माफी का वादा, लेकिन क्या खेती की समस्या का यही हल है?
सरकारें आज इस स्थिति में नहीं है कि वो जितना चाहे वो कर्ज माफ कर सकती हैं। जो हम ये बोझ अब ढो रहे हैं पूरे देश को अगर ले।
होगा साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, भूमिका राय से। अब से कुछ देर पहले भारत सरकार ने भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को मंजूरी दे दी है। अब यहाँ राज्यपाल के शासन की जगह भारत के राष्ट्रपति का शासन लागू होगा। पिछले चार दशकों में ये तीसरी बार है जब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा है। इससे पहले आखिरी बार साल 1990 में प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लगा था, जो 6 साल तक चला था। भारतीय संसद में ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा के लिए लाए जा रहे कानून विधेयक को ट्रांसजेंडर समुदाय ही मना कर रहा है। ट्रांसजेंडर बिल के तहत किसी ट्रांसजेंडर का भीख मांगना या उसे भीख मांगने के लिए मजबूर करना दंडनीय अपराध होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसकी वजह से ट्रांसजेंडर समुदाय को ही निशाना बनाया जाएगा। ट्रांसजेंडर समुदाय नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में भी कोटा चाहता है। ये विधेयक सोमवार को लोकसभा में पारित हो गया था। भारत में कानून के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को बराबरी का हक हासिल है, लेकिन सामाजिक स्तर पर अभी तक इस समुदाय को बराबरी नहीं मिल सकी है। ब्रिटानी सरकार देश के लिए नई प्रवासी नीतियों का प्रस्तावित मसौदा आज प्रकाशित कर रही है। ब्रिटानी गृह मंत्री साजिद जावेद के मुताबिक ये बीते चार दशकों में ब्रिटेन के प्रवासन नियमों में सबसे बड़ा बदलाव होगा। इसके तहत यूरोपीय संघ के नागरिकों का ब्रिटेन में स्वतंत्र आवागमन बंद हो जाएगा और कौशल आधारित नीति प्रवासन नीति बनाई जाएगी। साजिद जावेद का कहना है कि ये नीति ब्रिटेन को और अधिक समृद्ध होने में मदद करेगी। गृह मंत्री साजिद जावेद ने कहा,
There's no specific target. What we have set out is that it will be a system that will bring net migration down to more sustainable levels.
कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है। हमने तय किया है कि ऐसा सिस्टम बने जो कुल प्रवासन को सतत स्तर तक ले आए। अगर आप आज के प्रवासन के स्तर को देखें तो ताज़ा आंकड़ा 87,300 है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा है, और ऐतिहासिक पैमाने पर देखें तो पिछले दो दशकों में ये लाखों में ही रहा है, और अगर आप और पीछे जाएं तो इसकी संख्या तुलना और कम कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये ऐसे स्तर पर आ जाए जिसे बरकरार रखा जा सके, यानी हमारी आर्थिक ज़रूरतें भी पूरी हों और प्रवासी स्थानीय समुदाय और सेवाओं का भी बोझ ना बने। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका ने जासूसों और चीनी कंपनियों पर साथ मिलकर पश्चिमी कंपनियों के तकनीकी राज चुराने के आरोप लगाए हैं। अमेरिका के जासूस विरोधी सुरक्षा केंद्र की निदेशक बिल इवानिना का कहना है कि बीते 6 महीनों के भीतर ही 20 चीनी नागरिकों और कंपनियों पर व्यापारिक राज चुराने के आरोपों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अमेरिका का कहना है कि चीनी एजेंट जानबूझकर पश्चिमी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हैं और जानकारियां चुराते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि चीनी कंपनियां आर्थिक जानकारियां चुरा रही हैं, जिससे अमरीकी कंपनियों को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। यूरोपीय संघ के राजनयिक संवाद की 3 साल तक बड़े पैमाने पर हुई साइबर हैकिंग के बारे में अधिक जानकारियां सामने आ रही हैं। एक सुरक्षा कंपनी की जांच के बाद अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने हजारों संदेशों का ब्यौरा प्रकाशित किया है। एक विशेषज्ञ के मुताबिक हैकिंग में जो तकनीक इस्तेमाल की गई है उसे चीनी सेना इस्तेमाल करती रही है। जो संदेश हैक किए गए उसमें जुलाई में अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के बीच हुई बैठक का ब्यौरा भी था। दुनिया की सबसे बड़ी दवा कंपनियों में शामिल फाइजर और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइकन अपनी स्वास्थ्य उत्पाद इकाइयों का विलय कर रही हैं। कंपनियों का कहना है कि साझा कंपनी काउंटर पर बिकने वाली दवाइयां बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएंगी। आप सुन रहे थे बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले रुख भारत प्रशासित कश्मीर का, जहां आज से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। जम्मू कश्मीर में इसी साल जून में बीजेपी पीडीपी गठबंधन सरकार के गिरने के बाद से ही यहां राज्यपाल शासन लग गया था। 6 महीने बाद 18 दिसंबर को राज्यपाल शासन खत्म होने के बाद यहां राष्ट्रपति शासन को केंद्र सरकार ने सहमति दी थी। पिछले 40 सालों में 8वीं बार यहां राज्यपाल शासन लगा है। पूरी रिपोर्ट हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर से।
राज्य में बीते 19 जून को सियासी संकट पैदा होने के बाद जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया था, जो 19 दिसंबर यानी आज समाप्त हो गया है। राज्य के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बीते सोमवार देर रात केंद्र सरकार को पत्र लिखकर राज्य में 19 जून से राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की थी। राज्यपाल की सिफारिश को केंद्र की कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिलने के बाद कुछ ही देर पहले राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। गृह मंत्रालय ने इस हवाले से बाज़ाब्ता एक ऑर्डर जारी किया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद सारे इख्तियार अब संसद के पास होंगे। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि जम्मू कश्मीर से जल्द राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन को हटा दिया जाए और फौरी तौर चुनाव कराए जाए।
आई थिंक गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट्स रूल मस्ट कम टू एन एंड। देयर शुड बी इलेक्शंस। पीपल मस्ट चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु कैन वर्क।
पीडीपी ने भी राज्य में जल्द चुनाव कराने की मांग की है। पार्टी के प्रवक्ता रफी अहमद मीर का कहना था,
तो इसलिए ये हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टी और लोगों को ये सोचना है कि यहाँ गवर्नमेंट इन प्लेस होनी चाहिए। लोगों की सरकार, जो लोगों की चुनी हुई सरकार हो, जहाँ पे चुने हुए लोग जवाबदेह हों लोगों के सामने, उन्होंने क्या किस्म के कानून लाए, वो क्या करना चाहते हैं।
बीजेपी भी चाहती है कि राज्य में जल्द चुनाव हों। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल,
आगे के लिए तो राष्ट्रपति शासन होगा ही, लेकिन जल्द से जल्द चुनाव हो जाए और क्या। हमारी ये सोच है कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसलिए चुनाव के साथ इसका चुनाव हो जाए।
बीते जून को जम्मू कश्मीर में उस समय राजनीतिक संकट पैदा हो गया था जब बीजेपी ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस लिया था और जिसके बाद राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया गया था। बीते 21 नवंबर को राज्य में पीडीपी ने एनसी और कांग्रेस के समर्थन से एक बार फिर सरकार बनाने की कोशिश की थी, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन ने भी बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया था। हालांकि दोनों का सरकार बनाने का दावा पेश करने के साथ ही राज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया था। राज्यपाल ने विधानसभा को भंग करने के कारण बताते हुए कहा था कि सरकार बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने खरीद फरोख्त और सरकार का सत्र न होने का हवाला देते हुए विधानसभा को भंग कर दिया था। बीते 4 दशकों में ऐसा तीसरी बार होगा जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया हो। राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन वर्ष 1990 से लेकर वर्ष 1996 तक लागू किया गया था। वर्ष 1990 में कश्मीर में हथियारबंद आंदोलन शुरू हो गया था और कश्मीर के हालात काफी ज्यादा अशांत हो गए थे। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
और अब रुख उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का, जहां इस महीने की शुरुआत में गोकशी की एक घटना के बाद हुई हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और एक स्थानीय युवक की मौत हो गई थी। ये हिंसा तब भड़की जब सियाना के नजदीक महाव में स्थानीय हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोग कथित गोहत्या के नाम पर प्रदर्शन कर रहे थे। गोकशी के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि ये लोग असली गुनहगार नहीं है। पहले सुनते हैं बुलंदशहर के पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव क्या कहते हैं।
पूरी घटनाक्रम को लेकर के हम लोग लगातार विवेचना कर रहे थे, और हमारी एसआईटी की टीम और कई टीमें इस पर लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हमारी टेक्निकल टीम भी उसमें लगी हुई थी। समुचित साक्ष संकलन करने पे ये तथ्य प्रकाश में आया कि 3 अन्य लोगों ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर के ये गोलकशी की घटना की है, जिसमें सफिशियंट साक्ष संकलित किए गए, जो एविडेंसेस उपलब्ध थे उनका इवेल्युएशन किया गया और इसके आधार पे ये निकल करके आया कि जो अभी हमने कल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, इन लोगों ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर के गोकशी की घटना की थी। उनसे पर्याप्त मात्रा में जो उस गोकशी की घटना में प्रयुक्त व्हीकल था, जिप्सी थी, गन थी और भी वस्तुएं जो थी वो सब बरामद कर ली गई। पूर्व में जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे उनके विरुद्ध सफिशियंट साक्ष्य नहीं है, बल्कि इन जो बाद में पकड़े गए हैं इन्होंने ये घटना कारित की। तो इसमें निष्पक्ष कार्यवाही करते हुए हम लोग जो 4 अभियुक्त पहले से पकड़े गए थे उन्हें उनके विरुद्ध 169 CRPC की कार्यवाही कर रहे हैं।
इस मामले में पड़ताल आगे कहां तक पहुंची है और क्या बजरंग दल के नेता योगेश राज, जिनका नाम इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या की एफआईआर में सबसे ऊपर है, अब तक पकड़े गए? यही जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव से, जो फिलहाल बुलंदशहर में हैं।
देखिए मानसी, बुलंदशहर जो हिंसा हुई थी उसका जो मामला है वो न सिर्फ और पेचीदा होता जा रहा है बल्कि जो उस पर रहस्य वो भी गहराता जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने पहली बार इस बात को माना है कि उन्होंने जो हिंसा के पहले की कथित गोहत्या की वारदात हुई थी उसमें जिन लोगों को हिरासत में लिया था, जिनको उन्होंने कैद में रखा था, अब उनकी जांच ये पा रही है कि वो शायद उसमें शामिल नहीं थे। तो एक तरह से ये दिखाता है कि पुलिस की जांच थी वो शायद सही दिशा में नहीं थी और पुलिस ने खुद भी इसको इनडायरेक्टली माना है। लेकिन साथ ही जितने भी लोगों के खिलाफ, 28 लोगों के खिलाफ नामजद FIR हुए थे उसमें से करीब 20 जो है अब गिरफ्तार हो रहे हैं, कुछ ने सरेंडर किया है, कुछ को पुलिस तमाम अगल बगल के जिलों से पकड़ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी हकीकत है वो ये है कि जो मुख्य आरोपी है योगेश, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो योगेश की गिरफ्त को लेकर बहुत गंभीर है, तमाम जगह दबिश डाल रहे हैं, लेकिन आज हम योगेश के गांव में नया बांस में हमने करीब 2.5-3 घंटे बिताए और वहां पर हमें जाके ये समझ में आया कि योगेश के जो गांव है नया बांस, वहां पर पिछले 3 दिनों से पुलिस की कोई दबिश नहीं हुई है। यानी वो कह रहे थे कि शुरू में जब घटना हुई थी 3 दिसंबर के बाद तो रोज पुलिस की दबिशें होती थी, लेकिन पिछले 3 से 4 दिन में कोई दबिश नहीं हुई है। इस बीच प्रदेश की सरकार का तमाम फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स 80 से ज्यादा, जिन्होंने इस बात की निंदा की है कि प्रदेश की सरकार जो है वो इस मामले को उतनी गंभीरता से, उतने संवैधानिक तरीके से नहीं डील कर रही है जितना करना चाहिए। तो ये सारी चीजें मिलाकर ये दिखाती हैं कि अभी मामले में काफी कुछ होना और बाकी है।
इस बीच में इस तरह की खबरें आ रही थी कि जो परिवार है सुबोध सिंह का, वो पुलिस की जांच से काफी नाराज हैं।
जी, सुबोध सिंह का जो परिवार है उनसे हमारी लगातार बात हो रही है, उनके बेटे से हमारी बात हो रही है, खासतौर पर अभिषेक जो है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो लोग जांच से सेटिस्फाइड नहीं है। अभिषेक ने मुझसे खुद कहा कि वो मौका वारदात कर दी गए और उनको लगा कि जिस तरह से जांच हो रही है उससे जांच का निष्कर्ष शायद ना निकले, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल चुके हैं, उनका परिवार मिल चुका है। लेकिन जो मैं पहले भी कह रहा था, लबो लबाव ये निकलता है कि इस दुर्घटना में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनमें से कईयों के स्वर जो है वो थोड़े तीखे दिख रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये मामला अभी कुछ दिन और बहुत ही गर्म बना रहे।
बुलंदशहर हिंसा मामले में कहां तक पहुंची जांच, जानकारी दे रहे थे BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 9510 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब कार्यक्रम में बात किसानों की, कर्ज माफी की और कर्ज माफी के पीछे की राजनीति की। हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने ऐसे 3 राज्यों में जीत का परचम लहराया जहां BJP की सरकार थी। इन राज्यों में कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का वायदा किया था और चुनाव जीतने के बाद उसने फिलहाल 2 राज्यों में इसकी घोषणा कर दी है। पहले सुनते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा।
हमने वायदा किया था कि 10 दिन में कर्जा माफ होने का काम शुरू हो जाएगा। 2 स्टेट्स में, मैं खुशी से कह रहा हूँ, 2 स्टेट्स में 6 घंटे नहीं लगे और तीसरे स्टेट में होने वाला है। मोदी जी 4 साल से 4.5 साल से प्रधानमंत्री हैं, 1 रुपया उन्होंने हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं किया, 1 रुपया नहीं किया। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और बाकी सब विपक्ष की पार्टी एक होकर नरेंद्र मोदी से कर्जा माफ करके ही दिखाएंगे। हम खड़े होंगे, हम उनसे लड़ेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, उनको सोने नहीं देंगे, रात भर सोने नहीं देंगे जब तक हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं होगा।
अब इसके बाद असम, जहां भाजपा की सरकार है, वहां की कैबिनेट ने ऐलान किया है कि किसानों के कर्जे का 25% अधिकतम 25,000 रुपए तक माफ किया जाएगा। गुजरात ने भी किसानों के बिजली के बिल को माफ करने का ऐलान किया है। इधर 4.5 साल पहले उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का कहना है कि वो इस बात का पूरा समर्थन करते हैं कि किसानों का पूरा कर्ज माफ होना चाहिए। BJP ने BJD की सरकार वाली ओडिशा के किसानों से वादा किया है कि 2019 में सत्ता में आने पर वो किसानों का कर्ज माफ करेगी। कर्ज माफी से जुड़ी ये सभी घोषणाएं कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि 2019 के चुनावों में किसानों का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। इतना ही नहीं, सवाल ये भी है कि आजादी के इतने साल बाद भी अगर राजनीतिक पार्टियां कर्ज माफी के बारे में पहले सोचती हैं, ना कि खेती के हालातों को सुलझाने के बारे में, तो क्या ये अपने आप में गंभीर मुद्दा नहीं है। नीति आयोग के पूर्व प्रमुख अरविंद पनगड़िया ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर कर्ज माफी किसानों को फायदा पहुंचाती है तो ये बेहतर रास्ता है, लेकिन अगर आजादी के 70 साल के बाद भी किसानों की स्थिति नहीं सुधरी है तो हमें दूसरे रास्ते तलाशने चाहिए। इन्हीं सभी मसलों को समझने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक मामलों के जानकार आशुतोष सिन्हा से, और उनसे सबसे पहले मैंने यही सवाल किया, क्या राजनीतिक पार्टियां कर्ज माफी के जरिए सत्ता का रास्ता तलाश रही हैं?
देखिए, ये सवाल तो अब जरूर उठने लगेगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जो भी नोकझोंक चल रही थी 5-6 राज्य में, खासकर 3 राज्यों में जो कि बीमारू राज्य में शामिल होते हैं, उन पर जो भी अपना सिक्का जमा पाता, एक ढंग से कहें तो वो ये तय करेगा कि आगे एजेंडा क्या होगा। ये स्थिति बहुत साफ थी काफी दिनों से। अब हम इसे अगर पॉलिटिकल नजरिए से देखें तो चाहे जो भी सरकार रही हो, किसी ने आज तक कोर मुद्दे को अभी तक ढंग से वो नहीं सुलझा पाए हैं। इससे आसान रास्ता कई पॉलिटिशियंस को लगता है कि ये है, आपके कर्ज को माफ कर देंगे। ये 2009 के चुनाव के पहले अगर आपको याद होगा तो करीब 60-65 हजार करोड़ के कर्ज को माफ कर दिया था यूपीए सरकार ने, और उसके बाद उससे बेहतर स्थिति में वो सरकार आई दोबारा चुनकर। और ये मुद्दा इसलिए ज्यादातर चुनाव के आसपास आता है क्योंकि जो वोटर हैं वो चुनाव के आसपास जो घोषणाएं होती हैं उन पर बड़े अच्छे से वो ध्यान देते हैं और वो उनके दिमाग पर हावी होता है। तो ये तो हुआ पॉलिटिकल मुद्दा, लेकिन इकोनॉमिक मुद्दा अगर देखें तो क्या इससे कोई फर्क पड़ा है? मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ा है, क्योंकि सरकारें आज स्थिति में नहीं है कि वो जितना चाहे वो कर्ज माफ कर सकती है। जो हम ये बोझ अब ढो रहे हैं पूरे देश को अगर ले हम, तो ये देखिए करीब सालाना जो लोन किस किसानों को दिया जाता है बजट में, किसी भी साल के बजट को उठाकर पढ़ ले, चाहे वो अरुण जेटली जी का बजट हो या फिर वो चिदम्बरम साहब का बजट हो या उससे पहले प्रणब मुखर्जी साहब का बजट हो, उस बजट में ये जरूर लिखा होता है इस साल हम लोग किसानों को कितना कर्ज दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि क्या वो पैसा वापस आ रहा है। वो पैसा अगर वापस नहीं आएगा तो बैंक कमजोर होंगे और वो शायद कुछ साल बाद वो कर्ज माफी या कर्ज देने के लायक भी नहीं रहेंगे।
सर, जैसा आपने ये बात अभी बताई कि अगर किसानों से पैसा वापस नहीं आया तो बैंकों पर उसका प्रेशर पड़ेगा, लेकिन ये दलील भी तो सही है कि जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे नहीं देता है वापस, यानी एनपीए जब बनता है बैंकों का, तो वो भी तो एक बहुत गंभीर मुद्दा बन के सामने आता है।
बिल्कुल, इस सरकार की ये दाद देनी होगी कि कम से कम बैंकरप्सी कोड लाकर उन्होंने एक प्रक्रिया शुरू की है जिससे कि ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट में कुछ भय तो बना है। तो इस प्रक्रिया को आमतौर पर इकोनॉमिस्ट जो है वो कहते हैं सिक कंपनी हेल्दी प्रमोटर्स। कंपनी बीमार हो गई लेकिन
कर्जा लेने वाले हैं वो माला माल रहे।
उम्मीद करते हैं जब ये आईबीसी अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट होगा शायद बैंकों को वो डर कम रहेगा।
एक मुद्दा यहाँ पर ये भी है कि आजादी को आज 70 साल से ऊपर होने को आए हैं, किसानों के लिए कर्ज माफी या क्रॉप लोन्स हमेशा से दिए जाते हैं, तो क्या साल दर साल कर्ज माफी और लोन के सहारे खेती को टिकाए रखना अपने आप में एक बहुत गंभीर संकट की भूमिका नहीं बना रही है?
देखिए, कर्ज माफी करना बहुत ही आसान तरीका है आपको किसी भी परेशानी को दूर करने का, और वो लगेगा कि फिलहाल के लिए टल गया है, अगले चुनाव के समय फिर देखा जाएगा क्या करेंगे। देखिए, हमारा जो लैंड होल्डिंग है इतना छोटा होता जा रहा है कि हम बड़े स्केल पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। तो जिस ढंग से हम अपनी जमीनों को ऑर्गेनाइज करते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग की जरूरत है। अगर हम सभी किसानों को एक साथ लेकर चलेंगे तो इसमें भला सबका होगा और पूरे वैल्यू चेन में ये फायदा दिखाई देगा। वो कोशिश जब तक सरकार दृढ़ संकल्प नहीं होगी, ये कोशिश करना बहुत मुश्किल होगा, इसको सही अंजाम देना बहुत मुश्किल होगा।
भारतीय राजनीति में आज कर्ज माफी बड़ा मुद्दा बन गई है, विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष सिन्हा। और अब वक्त है साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान का। जर्मनी की सत्ताधारी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी CDU ने एनिग्रेट क्राप कारेनबावर को अपनी पार्टी का नया नेता चुना है। इसके साथ ही पार्टी प्रमुख के तौर पर एंगेला मर्केल का 18 साल का शासन खत्म हो गया है। जर्मनी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की नई प्रमुख एनिग्रेट कारेनबावर अब अगली जर्मनी की चांसलर बन सकती हैं। دنیا جہان میں اس ہفتے چرچا جرمنی کی راجنیتی میں ہوئے اس بڑے بدلاؤ کی۔ پرستوتی سندیپ سونی کی۔
دنیا جہان۔
Stimmen, das sind 51,75%. Damit ist sie zur neuen Parteivorsitzenden der CDU gewählt.
جرمنی میں ستاداری کرسچین ڈیموکریٹ یونین پارٹی نے اپنا نیا نیتا چن لیا ہے۔ نام ہے انیگریٹ کرام کارن باور۔ 56 ورشی انیگریٹ جرمن چانسلر اینگلا مرکل کی وفادار رہی ہیں۔
Ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen und ich bedanke mich
میں اس ووٹ کو سویکار کرتی ہوں۔ آپ نے جو بھروسہ مجھ پر جتایا اس کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ۔
Wettbewerb, den wir uns geliefert haben۔
انیگریٹ کے سامنے دو اور امیدوار تھے جنہوں نے پارٹی ادھیکش کے لیے اپنی دعوے داری پیش کی تھی، لیکن کڑے مقابلے میں انیگریٹ کی جیت ہوئی۔ کیا وہ سی ڈی یو پارٹی کی پہلی پسند تھیں جن میں جرمنی کو اپنا بھاوی چانسلر نظر آیا؟ بھاوی چانسلر اس لیے کیونکہ سی ڈی یو جرمنی کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور اس کا سردار بننے کے بعد اگلی کرسی جرمن چانسلر کی ہی ہوتی ہے۔ جرمنی میں رہنے والے ورشٹ پترکار رام یادو کہتے ہیں،
پہلی پسند انیگریٹ ہی تھی۔ اس مقابلے کو کڑا ہی کہنا پڑے گا کیونکہ انتر بہت ہی کم ہے، میرے خیال سے 16-17 ووٹ کا ہی انتر ہے۔ اس کے پہلے وہ 2011 سے 2018 تک اپنے چھوٹے سے راجیہ زارلینڈ کی مکھیہ منتری اور وہاں سی ڈی یو پارٹی کی ادھیکش بھی تھی۔ راشٹریہ راجنیتی میں وہ پہلی بار اس سال فروری سے آئیں جب اینگلا میرکل نے ان کو سی ڈی یو پارٹی کا مہا سچیو بنایا، اور اسی سمے لگ رہا تھا کہ اینگلا میرکل ان کو اپنے اتراधिकारी کے طور پر دیکھتی ہیں، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ شاید یہی پارٹی ادھیکش بھی بنے۔ کافی سمے تک انہیں اینگلا میرکل کی چھایا میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ ابھی اینگلا میرکل 3 سال تو اور ہی چانسلر پد پر رہنا چاہتی ہیں، اور اس دوران اگر ان میں یہ مہتواکانکشا ہے اور انہوں نے سنکیت دیا ہے کہ یہ مہتواکانکشا ہے ان میں کہ یہ بھی چانسلر بنے، تو ان کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اینگلا میرکل کی چھایا سے باہر نکلنا پڑے گا۔
جرمن چانسلر اینگلا مرکل کی چھایا میں راجنیتی کی سیڑھیاں چڑھ کر پارٹی پرمکھ بنی انیگریٹ کے لیے جرمنی کے ہی ایک نیتا نے ٹویٹ کیا کہ انہیں اپنے پیر کی سائز کی تلنا میں بڑا جوتا ملا ہے۔ انیگریٹ سے ہارنے والے اور اینگلا مرکل کے ویرودھی فریڈریش نے اپنی ہار کے بعد کہا کہ یہ چناؤ بتاتا ہے کہ سی ڈی یو پارٹی میں صحیح معنی میں لوکتنتر ہے۔ کیا واقعی یہ ایسی بات ہے یا اینگلا مرکل کی پسند سب پر بھاری پڑی؟
میں کہوں گا کہ اینگلا میرکل کی یہ پسند تو تھی ہی، اسی لیے اینگلا میرکل نے شاید بہت پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ وہ پارٹی ادھیکش پد اس سال چھوڑ دیں گی۔ اس بیچ میں جرمنی میں 3-4 ایسے چناؤ ہوئے ودھان سبھاؤں کے جس میں سی ڈی یو پارٹی اس کے ووٹ بری طرح سے گرے۔ ذمہ داری چانسلر میرکل پر ہی ڈالی گئی کہ یہ مکھیہ روپ سے ان کی شرنارتھیوں کے پرتی جو نیتی رہی ہے اس کے کارن پارٹی کی الوک پریتا بڑھی ہے، لوک پریتا گھٹی ہے۔ اس لیے اینگلا میرکل کو کسی ایک اچت اتراधिकारी کی میری سمجھ سے تلاش تھی اور وہ انہی میں ان کو نظر آئی۔ پارٹی کے اندر اسے پھر بھی پوری طرح سے لوک تانترک اس لیے ماننا ہوگا کہ 3 لوگوں نے باقاعدہ چناؤ لڑا ادھیکش پد کا۔ اینگلا میرکل اس کو اس طرح سے پربھاوت نہیں کر سکتی تھی جس طرح سے لوگ، بلکہ شاید کچھ لوگ چاہتے رہے ہوں گے۔ میٹس کے اور انیگریٹ کے ووٹوں میں جو بہت معمولی انتر ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اینگلا میرکل کے اشارے پر سب کچھ ہوا۔
بھلے ہی سب کچھ اینگلا مرکل کے اشارے پر نہ ہوا ہو، لیکن آلوچک انیگریٹ کو منی مرکل کہتے ہیں۔ جرمنی میں ورشٹ پترکار رام یادو سے میں نے اس کی وجہ پوچھی۔
اس کی وجہ میں اس میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تک ان کے بارے میں زیادہ کچھ جانا نہیں جاتا ہے سوائے اس کے کہ یہ زارلینڈ راج کی مکھیہ منتری رہ چکی ہیں، وہاں کی سی ڈی یو کی ادھیکش رہ چکی ہیں، اور وہ بہت جرمنی کے سب سے چھوٹے راجیوں میں سے ایک ہے۔ تو اگر ان کو پارٹی سچیو نہیں بنایا گیا ہوتا تو پہلی بات ان کے یہاں تک پہنچنے یا اس بار پارٹی ادھیکش کا چناؤ جیتنے یا اس میں امیدوار بننے کی سمبھاونا بھی نہیں بنی ہوتی۔ اور اینگلا میرکل تو پچھلے سمجھ لیجئے کہ 4 سنسدی کالوں سے جرمنی کی چانسلر ہیں، ہیلموٹ کول کے بعد سب سے لمبے سمے تک وہی جرمنی کی چانسلر ہیں، تو نشچت روپ سے جو کوئی بھی ان کے بعد آئے گا اس کے لیے یہی کہا جائے گا کہ وہ منی ہے۔ या वो बहुत बड़े जूते में अपना पैर डाल रहा है, उस जूते में पैर डालकर उसके लिए चलना बहुत मुश्किल होगा।
कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि अनेग्रेट को आगे किया जाना ये बताता है कि जर्मनी में जनमत की हवा किस दिशा में बह रही है। एंगेला मर्केल को उदार मध्यमार्गी नेता कहा जाता है और जर्मनी के लोग शायद आगे भी इसी तरह का नेतृत्व चाहते हैं। मध्यमार्गी छवि वाली अनेग्रेट में ऐसा क्या है कि जर्मनी में उन्हें अगले चांसलर के तौर पर देखा जाए?
सच्चाई ये है कि इस साल फरवरी में जब अंगेला मर्केल ने इनको पार्टी महासचिव बनाया तो उसी समय सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनको क्यों, इनकी तो कोई ऐसी छवि है नहीं, ऐसा कोई नाम है नहीं। मेरा समझना है कि अंगेला मर्केल क्योंकि खुद महिला हैं, लंबे समय तक चांसलर रही हैं, उनकी एक अपनी मध्यमार्गी छवि बन गई जो जिसको बहुत सारे लोग जर्मनी में मध्यमार्गी से अधिक वामपंथी कहते हैं। मैं उसको भी बिल्कुल तो वैसा नहीं मानता। इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये अंगेला मर्केल की तरह मध्यमार्गी तो हैं लेकिन दक्षिण पंथ की तरफ कुछ ज्यादा झुकी हुई हैं। पर इनमें ऐसी कोई विशेषता नहीं है कि इनको सचमुच अंगेला मर्केल का उत्तराधिकारी बनना चाहिए या चांसलर बनना चाहिए। इसलिए जब तक अंगेला मर्केल 3 साल तक और चांसलर हैं और ये CDU पार्टी की अध्यक्ष हैं, तब तक इनको अध्यक्ष पद पर रहते हुए ऐसे कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे या पार्टी को ऐसी कोई दिशा देनी पड़ेगी जिससे अंगेला मर्केल की समस्या बहुत बढ़े भी नहीं, इनकी एक अपनी अलग छवि बन सके जिसके आधार पर ये लोगों से कह सकें कि देखो बाकियों से मैं इस मामले में अलग हूँ, इसलिए मुझे चांसलर बनना चाहिए। अगर ये इस तरह से कर पाती हैं तब तो ठीक है, वरना इनमें कोई करिश्माई पर्सनैलिटी नहीं है।
तमाम आलोचनाओं के बावजूद अनेग्रेट आत्मविश्वास से भरी हुई हैं और अपनी पार्टी के सदस्यों से कहती हैं कि आप चाहे जो कहें, मैं जो हूं उस पर मुझे गर्व है। बर्लिन में मौजूद BBC संवाददाता जेनी हिल का मानना है कि अनेग्रेट में भले ही एंगेला मर्केल की शैली और राजनीति नजर आती है, इससे उनकी योग्यता को कम करके नहीं देखा जा सकता।
She has a reputation for calm analysis, a straightforward approach to politics.
उनकी छवि इस तरह की है कि वो एक शांत व्यक्ति हैं। उनमें विश्लेषण की क्षमता है, राजनीति को लेकर भी उनका रुख एकदम साफ है। उन्होंने ये उम्मीद भी जगाई है कि निकट भविष्य में भले ही ना सही लेकिन जब भी एंगेला मर्केल जर्मनी चांसलर का पद छोड़ेंगी उसमें किसी तरह की दिक्कत पेश नहीं आएगी, सत्ता का हस्तांतरण बिना किसी अड़चन के हो जाएगा।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मर्केल की हर नीति पर अनेग्रेट की सहमति है, जैसे कॉरपोरेट बोर्ड्स में महिलाओं के लिए आरक्षण, समलैंगिक विवाह, प्रवासियों के लिए नीति और रूस के साथ संबंध जैसे कुछ मुद्दों पर उनका अपना नजरिया है। लेकिन फिलहाल सब कुछ पहले जैसा ही होगा क्योंकि जर्मन चांसलर अभी भी एंगेला मर्केल हैं।
Wissen wir alle, dass die illegale Migration wegen der unterschiedlichen Entwicklungschancen auf der Welt in unseren Ländern zum Teil sehr große Ängste verursacht.
हमने कहा था कि एंगेला मर्केल का शासन जर्मनी में खत्म हो गया है, लेकिन सच ये है कि अभी वो 3 साल तक चांसलर बनी रहेंगी। दुनिया जहान की संदीप सोनी की ये पेशकश आपको कैसी लगी, हमें आपके खतों और ईमेल का इंतजार रहेगा। और कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
भारत सरकार ने भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को मंजूरी दे दी है। अब यहां राज्यपाल के शासन की जगह भारत के राष्ट्रपति का शासन लागू होगा। भारतीय संसद में ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा के लिए लाए जा रहे कानून का विरोध ट्रांसजेंडर समुदाय ही कर रहा है। ये विधेयक सोमवार को लोकसभा में पारित हो गया था। ब्रिटानिया सरकार देश के लिए नई प्रवासी नीतियों का प्रस्तावित मसौदा आज पेश कर सकती है। ब्रिटानिया गृहमंत्री साजिद जावेद के मुताबिक ये बीते 4 दशकों में ब्रिटेन के प्रवासन नियमों में सबसे बड़ा बदलाव होगा। अमेरिका ने जासूसों और चीनी कंपनियों पर साथ मिलकर पश्चिमी कंपनियों के तकनीकी राज चुराने के आरोप लगाए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दवा कंपनियों में शामिल फाइजर और ग्लैक्सोस्मिथ अपनी स्वास्थ्य उत्पाद इकाइयों का विलय कर रही हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो में रविवार को होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत सवेरे 6:30 बजे। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।